ओम शांति। ऐसे तो जब पूछा था कि कुछ शेयर करेंगे तो ऐसे सोचा कि मधुबन में बाबा कई प्रेरणाएं देते हैं, तो उसके कुछ कुछ अनुभव आपको सुनाएं और फिर जो जहां पे अभी सेवा के लिए बाबा ने इटली में भेजा है उसका कुछ समाचार भी आपको सुनाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि एक मेरे मन में एक जैसे चित्र आया था, इमेज आया था कि हमारी मन और बुद्धि जैसे कि एक बड़ी टंकी है, नहीं, पानी की टंकी, लेकिन बिल्कुल उसको हम बाहर से देख सकते हैं। तो जब बहुत हलचल होता है, जब बहुत मूवमेंट होती है, तो सारी मिट्टी जो नीचे होती है टंकी के वो ऊपर आ जाती है और पानी बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती, जैसे लगता है कि ये साफ नहीं है। लेकिन जब हलचल बंद हो जाती है तो बिल्कुल क्लियर, सब कुछ शांत हो जाता है। नहीं, तो ये हलचल किस कारण होता है? नहीं, हमारे मन में कोई जैसे कभी कभी विकार की भी बात नहीं है, लेकिन एक जैसे एक्टिविटी कॉन्शियसनेस की बात होती है, एक्शन कॉन्शियसनेस। नहीं, तो जैसे आज सारे दिन में आपने क्या क्या किया? नहीं, जैसे आज सब्जी किसने काटी? नहीं, कोई है जिसने सब्जी काटी आज? और कौन सी सेवा की है? नहीं, आज बहुत सारे बहुत अलग अलग प्रकार की सेवा की है, किसने मनसा, किसने वाचा, किसने कर्मना द्वारा, नहीं, किसी ने रेस्ट की सेवा की, नहीं, शरीर को रेस्ट देने की सेवा, ये भी तो सेवा है। नहीं, लेकिन कभी कभी जब हम योग में बैठते हैं या कुछ शांत होने के लिए बैठते हैं तो ये एक्टिविटी हमारे मन के अंदर हलचल कर देती है। तो बस ये एक सिंपल सी बात है कि हम एक डिसीजन लेकर के बैठे कि बस अभी बाबा के सामने, बाबा की शक्ति द्वारा, क्योंकि बाबा की कंपनी हमें शक्ति देती है, नहीं, चाहे हमारे अंदर शक्ति न भी हो, लेकिन बाबा के सामने बैठ करके जैसे बाबा देता है शक्ति, बस अपने मन को, बुद्धि को एक बारी शांत कर दो, जैसे रुक जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, नहीं? और उससे वो जो क्लैरिटी आ जाती है हमारे मन में, जो पानी साफ हो जाता है, क्योंकि हमें जरूरत है अपनी मन बुद्धि की क्लैरिटी की, सफाई की जरूरत है, नहीं तो चेकिंग कैसे होगी? नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं चेक करना आता है, नहीं, इतना इजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है अपने आप को देखना कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, क्या चल रहा है, मेरा दिल साफ है या अभी तक कोई भी फीलिंग्स है सारे दिन में जो कुछ भी किया है उसका, जैसे एक शब्द है इंग्लिश में रेजिड्यू, माना उसकी जो छोटी छोटी समझो इम्प्रेशन है वो रह गई है, या बिल्कुल उसको मैं ऑर्डर दूं और वो बिल्कुल साफ और शांत और क्लियर हो जाए। नहीं, और जब क्लियर हो जाता है तो फिर बाबा की टचिंग आ जाती है, नहीं, कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी ऐसी पुरुषार्थ करना है इस समय में, कोई भी बात हो उसकी सलूशन आ जाती है, नहीं, उसका हल आ जाता है हमारे सामने। नहीं, तो इसलिए ये एक एक्चुअली कोई इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है हमें, बस एक डिसीजन की जरूरत है कि हम बैठे बाबा के सामने कोई भी समय, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो, चाहे खास योग के समय हो, तो हम बैठे बाबा के सामने और बिल्कुल जैसे अपने मन बुद्धि की टंकी जो है उसको कहें बस अभी बिल्कुल शांत होकर के, सारी मिट्टी को नीचे ले करके, उसको मिट्टी को भी अपनी जगह दे दो, नहीं ऐसे नहीं कि बाहर करो, वो अपने आप बाहर चली जाएगी, लेकिन उस समय के लिए बस वो नीचे जाए, बिल्कुल क्लैरिटी हमारे मन बुद्धि में हो। तो ये एक बहुत अपने अंदर शक्ति भरने की, अपने मन और बुद्धि के ऊपर जैसे हमारी मास्टर, हम मास्टर बन जाए उसके ऊपर, तो ये एक बात है। और फिर दूसरी बात कि बाबा ने 5 तारीख को जो हम सभी ने वीडियो देखी थी बाप दादा की मुरली की, तो उसमें बाबा ने 3 खाते के बारे में बोला, नहीं? कि बाबा देख रहे हैं कि हमारे खजाने कितने जमा हुए हैं, लेकिन 3 खास खाते हैं। आपको याद है कौन से खाते? स्व पुरुषार्थ, बहुत अच्छा, और पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, वेरी गुड। तो बाबा ने ये कहा कि ब्राह्मणों के खजानों में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती, नहीं? तो उस कमी न होने का की विधि जमा करना है, नहीं? तो इसलिए बाबा बोल रहे थे कि जमा करो, लेकिन कभी कभी वो जैसे खाता, स्व पुरुषार्थ का खाता क्या है, नहीं, कैसे हम जमा कर सकते, क्या करना होता है ताकि वो खाता उसमें एडिशन होती जाए, नहीं? तो स्व पुरुषार्थ क्या है, जो हमारे अंदर से वो हम अपने खुद के प्रोग्राम से अपने आप को अटेंशन देते हैं, चाहे कोई और भी कुछ ना कर रहा हो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, या अपने अंदर कभी कभी अपने खुद की कंप्लेंट होती है, नहीं, कि मैं इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, मेरी अटेंशन नहीं है, अपने आप से थोड़ा जैसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ का खाता है वो तब जमा होता है जब हमने खुद एक ऐसी डिसीजन बनाई है कि मेरा आज का पुरुषार्थ क्या होगा, नहीं? क्योंकि बाबा ने हमें हजारों लाखों आइडियाज दिए हैं कि कौन सी हमारी डायरेक्शन हो जो जहां पर हम अटेंशन दें। रोज मुरली में तो बहुत होती है, नहीं, क्लासेस में भी बहुत होती है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे आंतरिक दिल में कौन सी ऐसी हमारी इंटरेस्ट की बात हो जहां पे हम अटेंशन देना चाहते हैं, और जब अटेंशन हम देना चाहते हैं तो उसमें मेहनत नहीं लगती। पुरुषार्थ है लेकिन मेहनत नहीं लगती, क्योंकि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, जो पुरुष माना आत्मा उसके लिए मीनिंगफुल, जो पुरुष के लिए के अर्थ का हो, जो पुरुष को जो अर्थ क्या होता है, वेल्थ होती है, नहीं, जो मुझ आत्मा को बहुत ही खजानों से भरपूर करने वाली हो, तो पुरुषार्थ का ये अर्थ है। अगर पुरुषार्थ मेहनत वाला बन जाता है तो थोड़े समय के बाद हम छोड़ देंगे, नहीं, थक जाएंगे, क्योंकि आजकल थकावट की बहुत बीमारी होती है, नहीं? तो कभी कभी जब ये समझते हैं कि हम ब्राह्मणों के खजाने में सब कुछ हो, तो आप समझते हैं कि आपके खजाने में सब कुछ है, नहीं? आप समझते हैं, ऐसे अनुभव करते हैं, नहीं? करते हैं, अच्छा, सब कुछ हमेशा सदा, सदा नहीं, कभी कभी, बाबा को ये शब्द नहीं पसंद है लेकिन रियलिटी तो है, नहीं? तो कभी कभी ऐसे होता है कि समझते हैं कि हमें समय की कमी है, नहीं? कौन अनुभव करता है कि समय की कमी, सारे दिन में बहुत एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ, जो अंतर्मुखी बनने का, चाहे मुरली 2-3 बार पढ़ने का या कुछ अपने ऊपर अटेंशन देने का, वो समय नहीं मिलता है, नहीं? ऐसे कोई है जो लगता है कि समय नहीं है, समय की कमी है? हाँ, तो ये बाबा ने कहा कि समय भी एक खजाना है, नहीं? तो पुरुषार्थ का ये मतलब है, स्व पुरुषार्थ, कि हम समय को कैसे बनाएं, नहीं? किस रीति से हमारा इतना इंटरेस्ट हो उस खास अटेंशन देने के लिए कि हम किसी ना किसी रूप से समय निकाल लेते हैं, नहीं? जहां पे इंटरेस्ट होता है, जहां पे कुछ हमारा जो कुछ प्राप्ति होती है तो वहां पे समय निकल जाता है, नहीं? वो आ जाते, पता नहीं कहां से निकल जाता है, तो इसीलिए ये इंटरेस्ट की बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें वो पुरुषार्थ चुनना है, चाहे आज की मुरली से है, चाहे कल की मुरली से है, तो बाबा की मुरली उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ हमारा अटेंशन जाएगा, हमारी बुद्धि वहाँ कनेक्ट होगी जहाँ पे हमारे दिल का इंटरेस्ट है, नहीं तो फिर दिल का इंटरेस्ट और जगह जाएगी, नहीं व्यर्थ में जाएगी या कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, और फिर वो जो जमा किया हुआ है उसको फिर वो लीक कर देती है, नहीं और फिर और भी जमा करना होता है। तो इसलिए स्व पुरुषार्थ का जो खाता है वो तब जमा होगा जब हमारा उसके ऊपर अटेंशन होगा, इंटरेस्ट के द्वारा अटेंशन होगा कि मेरा खुद का अटेंशन किस बात, आज मेरा कौन सा खास पुरुषार्थ होगा। तो ये एक है। दूसरा खाता दुआओं का खाता। अब दुआ एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल में नेचुरली उत्पन्न होता है औरों के कल्याण के लिए, एक ऐसी भावना है कि जो जिसको हम इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड कहते हैं, नहीं दुआएं वो एक ऐसा प्यार भरी भावना है जो तेरा कल्याण हो, नहीं जो हम ऐसे एक दूसरे को ऐसी दृष्टि से ऐसे प्रकार से संकल्प सोचते हैं कि इसका कल्याण आगे बढ़े, ये बिल्कुल जैसे दिल की थैंक्स निकलती है, नहीं जैसे इस आत्मा से मैं पूर्ण रीति से संतुष्ट हूँ। तो बाबा ने भी ये कहा कि दुआ का खाता तब बढ़ता है, तब अक्यूमुलेट होता है जब स्वयं से संतुष्ट होते हैं और औरों से संतुष्ट होते हैं। नहीं अब क्या होता है कि हम अपने आप से संतुष्ट तब होते हैं जब हम अपने जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं क्योंकि कभी कभी हम अपने खुद के ऊपर इतना कंप्लेंट करते हैं कि जैसे मतलब जो मेडिटेशन कमेंट्री चला लेते हैं, मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं थकी हुई हूँ, मैं ये मेरे अंदर वीकनेस है, तो ये जैसे उल्टी कमेंट्री चल जाती है हमारे अंदर, नहीं तो इसीलिए हमें अपने ऊपर हम अपने प्रति कैसे संतुष्ट रहेंगे। आप हैं अपने आप से संतुष्ट, नहीं अपने आप से माना अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से, अपने दिल से, क्या जो आपके दिल के अंदर जो फीलिंग्स है, जो आपके दिल के अंदर चलता है उससे आप संतुष्ट हो, नहीं जो आपके कॉन्शियंस है, आपकी विवेक है उससे आप संतुष्ट हो, आप कहते हैं आप संतुष्ट है पहले से। हाँ बिल्कुल राइट बात है, राइट। तो हमें देखना, ये चेक करना है कि हम कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कहाँ जाना है। तो इसीलिए संतुष्टता का ये मतलब नहीं है कि हम जैसे कहें बस अभी तक यहाँ तक तो पहुँच गए, बस अभी कुछ करना नहीं है, नहीं वो संतुष्टता नहीं है, लेकिन हमें चेक करना है कि ओके इतना किया है, इतना हम आगे बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये रियली मैं अच्छी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाबा की आंख मेरे ऊपर है, बाबा की श्रीमत मेरे ऊपर है, मेरे सामने है। तो ये जैसे स्वयं से संतुष्टता माना स्वयं के प्रति दुआएं, नहीं तो अगर हम खुद की जो वीकनेसेस हैं वो देखते रहें तो जैसे बददुआ देते हैं, नहीं उसकी ऑपोजिट तो होता है, दुआ नहीं देंगे तो क्या देंगे, बददुआ देंगे। तो ऐसे ही औरों के प्रति, तो हमारे हम जानते हैं, नहीं बाबा कहते देखते हुए न देखो, तो देखते तो सब कुछ है लेकिन न देखते हुए न देखो, इसका अर्थ क्या है कि जो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, जो आत्मा बाबा की बनी है या जो आत्मा भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है, वो उस एस्पेक्ट को देखकर उस आत्मा को दुआएं देने का ये हमारा एक जैसे कर्तव्य है। क्योंकि दुआएं नहीं देंगे तो उनको बद दुआ देंगे, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। तो अभी बाबा के ज्ञान से हम शक्तिशाली आत्मा बने हैं, तो हमारे संकल्प के अंदर वो शक्ति है, वो तेज है, इसलिए हमें अटेंशन देना होता है कि हम जब भी किसी के प्रति हम कुछ भी सोच रहे हो, अगर किसी के प्रति नेगेटिव है तो उनको जैसे कि हम बद दुआ दे रहे हैं, उनकी उनको रोक रहे हैं। तो हमें ये तो नहीं करना है, क्योंकि बाबा का कार्य तब पूरा होता है जब सभी एक लाइन तक, एक हद तक पहुंचेंगे अपने पुरुषार्थ में, अपने संपूर्णता में। तो इसलिए दुआओं का खाता, एक्चुअली ये हमें सारे दिन में ये भी हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक हमने आज हमारे दिल से वो जैसे हरेक की कल्याण के प्रति हमारी भावना रही नहीं। और फिर तीसरा खाता पुण्य का खाता नहीं। तो पुण्य का खाता, पुण्य माना ऐसा कर्म जो ऊंचा उठाने वाला कर्म हो नहीं। तो बाबा ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया था मुरली में कि ऐसा कर्म, ऐसी सेवा हो जो बिल्कुल निस्वार्थ, राइट, निस्वार्थ सेवा, और ऐसी सेवा जो बेहद की वृत्ति की सेवा, ऐसी भाव, ऐसी भावना, ऐसे हमारे अंदर जो रियली अपने प्रति लेकिन औरों के प्रति ऐसा कर्म हो जो ऊपर ऊंचा उठे नहीं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि पुण्य माना कोई बड़ा काम करना नहीं, लेकिन वास्तव में छोटी छोटी बातों में पुण्य हो जाता है, हो सकता है नहीं। कभी कभी अगर किसी से कोई हमारे से कुछ गलत रीति से बात करता है, जोर से बात करता है नहीं, कभी कभी होता है नहीं, हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई जैसे सेवा करते, सेवा साथी बनकर के कभी कभी कोई ऐसे जोर से बोल देता है। अब उस समय जो अंदर में रिएक्शन होती है नहीं, क्या संकल्प चलता है, ये क्यों ऐसे बोलता है, हमेशा बोलता है ऐसे या बोलती है नहीं, तो उस समय हम उसको परिवर्तन करके उस आत्मा को, जैसे हम उस आत्मा को भी छोड़ो लेकिन अपने ऊपर अटेंशन दे करके कि मेरा काम इस समय, मैं बाबा का साथी हूँ, मैं बाबा के कार्य में निमित्त सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो भी संकल्प उस समय आपकी मन को जैसे सेफ रखें और आपके वाइब्रेशन को ऐसे बनाएं ताकि आप ये इस वाइब्रेशन द्वारा कोई भी हो सामने, चाहे एक महान आत्मा भी हो, महारथी भी हो, कोई भी हो, हरेक के अंदर कुछ ना कुछ होता है नहीं, कभी कभी माया आ जाती है, कभी कभी कुछ अटेंशन मिस हो जाता है, तो कुछ बोलते हैं, करते हैं, लेकिन उसको न देखते हुए अपने ऊपर अटेंशन रख करके कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर किस लिए हूँ नहीं। तो ये अटेंशन जब हमारे अंदर होता है तो हम अपने मन को परिवर्तन करके वो वाइब्रेशन उसी समय में क्रिएट कर सकते हैं, बना कर रख सकते हैं, और वो जो हमारे सामने वो बात आई वो वहाँ की वहीं रुक जाती है, रुक भी नहीं जाती, परिवर्तन हो जाता है। अब ये वाइब्रेशन वातावरण को ऊंचा उठाने वाली है, उसको नीचा और ही नीचा ले जाने की नहीं है, लेकिन उसको रोक करके, नीचे जाने से रोक करके और उसको और ही ऊंचा उठाने का था। तो ये जैसे एक पुण्य का काम है, क्योंकि पुण्य माना एक कोई चीज जैसे डोनेशन, दान करना। अभी हम ब्राह्मणों को तो दान नहीं करेंगे नहीं, लेकिन हर समय पुण्य का जो ऐसे हम अपने खुद के खाते, पुण्य के खाते में जमा करने के लिए हमारा ही तो उसमें अटेंशन है, क्योंकि जमा तो हमारे में होगा, उनमें उनका थोड़ी ना होगा, अगर वो करेंगे तो उनका होगा, लेकिन जमा तो हमारे में होगा तो, और हमारे अंदर ही वो सुख, शांति, संपत्ति, ज्ञान की, शक्ति की, गुणों की जो सभी बाबा के ने खजाने दिए हैं संगम युग में, ये सभी खजाने हमारे ही खाते में जमा होंगे, नहीं तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट तो हमारा ही है। और एक बार जो पुण्य का खाता, जो हम पक्का उसको पुण्य के खाते में रख सकते हैं, वो एक शब्द आता है इंग्लिश में, प्योर इंटेंशन, जो स्वच्छ भाव जिसको कहते हैं। जो भी हम, जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो हम उसको अपने अंदर में चेक कर सकते हैं कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, कर रही हूँ। चाहे हम कोई भी स्थूल सेवा कर रहे हो, चाहे हम कोई भी जैसे वाचा द्वारा सेवा कर रहे हो, या चाहे हम कोई भी अपने लौकिक जॉब में भी सेवा कर रहे हो, वो भी तो सेवा ही हुई समझो, लेकिन हमारा अंदर में भाव क्या है। तो जब हम उसको याद करेंगे कि मैं क्यों ये सेवा कर रही हूँ, मैं क्यों ये कर्म कर रही हूँ, तो हम उसके अंदर वो जो प्योर इंटेंशन है वो याद रख करके, वो जब इमर्ज होगा, तो हमारा जो भी कर्म है वो जैसे पुण्य के खाते में जाता है। क्योंकि माया बहुत ही जैसे बहुत ही स्लिपरी है, नहीं वो आ जाती है बिना हमें बता करके, नहीं बिना पूछ करके आ जाती है, और फिर हम धोखा खा लेते हैं, नहीं तो इसलिए हर कर्म, जैसे सुबह के टाइम दो तीन अलग अलग कर्म तो करते होंगे, नहीं तो जैसे हम तीन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस है, नहीं बाबा हमें प्रैक्टिस दे रहे हैं अपने कर्मों को ऊंचा उठाने के लिए। तो बस तीन चीजें चूज कर सकते हैं कि चाहे हम कुछ खाना बना रहे हो, भोजन बना रहे हैं, नहीं या तो जो कुछ भी है, कुछ पढ़ना लिखने की का कार्य हो, शुरू करने से पहले मेरा इसमें प्योर इंटेंशन, स्वच्छ भाव क्या है, मैं इसको क्यों कर रही हूँ, चाहे बाबा के प्यार से कर रही हूँ, चाहे ये कार्य मुझे करना अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन मैं बाबा को इतना प्यार करती हूँ कि मैं बाबा तेरे लिए कर रही हूँ, बस ये अंदर में बिल्कुल अपनी वृत्ति को बदल देती है, और फिर वो कार्य भी जैसे सहज चल जाता है, नहीं वो भारीपन नहीं आता है ना। तो ये तीन खाते जो बाबा ने कहा, वो हमें अभी उसके ऊपर अटेंशन देना है, नहीं? तो फिर एक और बात जो हम सभी यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे आप सेवाधारी के रूप में हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे सेंटर पे रहते, चाहे घर पे रहते, जो भी है, लेकिन हम सभी कौन हैं? यज्ञ सेवा, नहीं यज्ञ सेवा करने वाले, नहीं यज्ञ रक्षक। तो अभी आप अगर हम समझेंगे कि यज्ञ क्या है, नहीं तो यज्ञ शब्द तो बहुत यूज करते हैं, नहीं लेकिन बाबा ने शिव रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा। तो तीन बातें इकट्ठे आए जिससे यज्ञ की रचना हुई। एक तो शिव बाबा, नहीं ऑलमाइटी बाबा, क्योंकि ऑलमाइटी बाबा के बिना इतना बड़ा जो परिवर्तन करने के लिए यज्ञ रचने का कार्य है, नहीं हो सकता, नहीं इतनी सारी महान आत्माएं हैं इस दुनिया में, लेकिन कोई नहीं कर सकता, इसलिए केवल एक शिव बाबा, ऑलमाइटी बाबा। फिर दूसरी बात ड्रामा, ड्रामा में वो समय आना था जब ये हो सकता है, नहीं जब ये यज्ञ की रचना हो सकती है, न पहले न बाद में, ये बिल्कुल एक्यूरेट समय। और तीसरा आदि देव ब्रह्मा बाबा, नहीं ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही, ब्रह्मा बाबा के जो समझो पहला मनुष्य आदि देव, तीन आदि देव, ड्रामा और शिव बाबा, इन तीनों हस्ती समझो का इकट्ठा आना और यज्ञ रचा। नहीं तो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया उस समय? उस समय बाबा ने सबसे पहली बात क्या हुई कि बाबा ने पहचाना, नहीं खुद को पहचाना कि जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ नहीं, कि जो मैं हूं वो तुम हो नहीं, तत्त्वम, तो ब्रह्मा बाबा ने उसको स्वीकार किया और अपने खुद को पहचाना, अपने खुद के संपूर्ण रूप को पहचाना। चाहे उस समय इतना समझ में नहीं था, उतना ज्ञान की, फिर धीरे धीरे ज्ञान में, पढ़ाई में कि भगवान कौन है नहीं, वो धीरे धीरे जैसे समझ आती जाए, लेकिन पहली बात यज्ञ रचने के लिए पहचान, खुद की पहचान। फिर दूसरा उसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने सब कुछ अर्पण किया। तो अर्पण करने का जो एक्ट है, जो कर्म है, वो जैसे यज्ञ के अंदर इतनी इंटेंसिटी, इतनी जैसे ज्वाला रूप की जो अग्नि है समझो, वो जैसे शुरू हो गए नहीं। और फिर केवल ब्रह्मा बाबा अकेले नहीं थे, उसके बाद सारे ब्राह्मण नहीं, धीरे धीरे सभी ब्राह्मण परिवार जैसे जन्म जन्म करके, जन्म होते हुए क्या होता है, हम सभी ने बाबा को पहचाना और अपने दिल को तन मन धन अर्पण किया, संबंध संस्कार सब कुछ जैसे बाबा के ऊपर अर्पण किया। तो ये जैसे यज्ञ को चलाने का ये जैसे एक कर्म है नहीं, हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि ये जो यज्ञ है, ये जो ओरिजिनल बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, इसकी शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है उसके चारों तरफ, क्योंकि इतना जैसे समझो एक्सपेंशन हुआ है नहीं, इतनी क्या कहते हैं उसको एक्सपेंशन है, तो उसके चारों तरफ संस्था बनी हुई है नहीं, क्योंकि हमें अगर ऐसे हैं 3, 4, 10, 200 तो चल भी सकता है नहीं, थोड़ा परिवार के रूप से तो चल जाता है, लेकिन जब इतने हजारे लाखे हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो होनी होती है नहीं। बाबा ने कहा है कि खड़े होने की भी जगह नहीं होगी नहीं, अभी तो आराम से बैठे हैं नहीं, परिवार यहाँ तो परिवार लगता है, खास करके ये हिस्ट्री हॉल में नहीं। लेकिन जब इतनी बड़ी संस्था बन गई है तो थोड़ा इजी हो जाता है कि हमारा जो ओरिजिनल यज्ञ है वो कभी कभी भूल जाता है नहीं। तो कई बातें देखते हैं नहीं? लेकिन बाबा ने कहा देखते हुए ना देखो, और ये याद रखो कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका पूरा नाम क्या है याद है सभी को नहीं? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो अभी उसका एक एक शब्द को लेकर के इतना नशा चढ़ जाता है नहीं, कि इतना बड़ा कार्य करने के लिए, विश्व को परिवर्तन, नरक से स्वर्ग बनाने के लिए, दुख इतनी दुनिया भरी दुख है, हर एक छोटे बड़े सब में, चाहे जानवर चाहे पक्षी, दुख ही दुख है। तो इतना बड़ा जो अंदर से कार्य करने के लिए जो शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है, उसके हम भागी हैं नहीं, उसमें हम केवल पार्टिसिपेंट नहीं हैं, लेकिन हम यज्ञ रक्षक हैं। तो यज्ञ रक्षक तब हम बन के रहेंगे जब हमें याद रहेगा कि हम कौन हैं और यज्ञ माना क्या, यज्ञ को कायम रखने के लिए कौन सी बातें हम अपनी स्मृति में रखें, कौन सी ऐसे हमें धारणाएं जो अंदर में गुप्त धारणाएं हैं, जो हम अपने उसको बस स्मृति में ला करके, याद करके, वो जैसे हमारे जीवन में इमर्ज हो जाती है, जो कभी कभी बिजी होने में, एक्शन करने में वो थोड़ा गुम हो जाती है, थोड़ा ऑर्डिनरी बन जाती है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है नहीं। ऊपर ऊपर से ऑर्डिनरी लगता है, साधारण लगता है नहीं, जैसे बाबा बोलते थे मुरली में, बोलते हैं कि ये देखो कितना साधारण है, कोई नहीं समझता कि भगवान खुद उनके द्वारा इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं नहीं। तो ये ऐसे कुछ आपको कुछ ऐसे जो अभी मधुबन के पावन तपस्या भूमि में कुछ ऐसे प्रेरणाएं हैं वो कुछ शेयर करना था। और फिर आपको थोड़ा जहाँ पे अभी 15 साल से जो इटली में जो यूरोप में है वहाँ पे सेवा के लिए गए हैं, तो अभी टोटल समझो 25 साल से भारत से निकले हैं। तो पहले यूके में 10 साल थे और फिर 15 साल से इटली में। और जैसे आप जानते हैं कि इटली और खास करके रोम, जो बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं, जो पोप है नहीं, क्रिश्चियन धर्म का जो जैसे समझो महा जो हेड है, जैसे हमारे महामंडलेश्वर होते हैं 4, वहां पे एक होता है, पोप होता है, और सभी उसको जैसे भगवान का रूप मानते हैं। और बस इस जो रोम में समझो 35 साल से सेवा चल रही है, लेकिन बाबा ने हमेशा जो बहन वहां पे रहती है, पुरानी बहन है, हमेशा बाबा जो पर्सनल मीटिंग में उनको बोलते थे कि ये कठोर जमीन है, ये धरती जब एक आएंगे तो सभी आएंगे, इसमें जो बीज है वो ऑलरेडी बोए हुए हैं, बस पानी देते रहो, पानी देते रहो, नहीं ज्ञान का, प्रेम का, तपस्या का, पानी दो उसको। तो ये बहन 35 साल से जो ब्राह्मण परिवार, तो छोटा सा परिवार है वहाँ, सारे इटली में समझो 50-60 ब्राह्मण है और वहाँ की पॉपुलेशन 60 मिलियन, क्या कहेंगे हिंदी में पता नहीं क्या, 6 करोड़, सारे इटली में उसका पॉपुलेशन, और मतलब एक ब्राह्मण 1 करोड़ नहीं करोड़ों में एक। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा था एक बारी कि जो दो बाबा के बच्चे आए थे इटली से, नहीं एक बहन और एक भाई, और बाबा ने देखा सभी को, नहीं ग्रुप्स आए हुए थे, तो एक बहन यहाँ थी, बाबा ने कहा इटली से कौन आए, तो अच्छा यहाँ पे एक कौन, अच्छा यहाँ पे दूसरा, नहीं। और फिर बाबा ने कहा कि एक एक के पीछे हजारों लाखों करोड़ों हैं, तो रियली ऐसे है। तो वहां पे तो क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का जैसे समझो मधुबन है वहां पे, क्रिश्चियन धर्म का जैसे सभी आते हैं, जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो ज्यादातर कैथोलिक होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि एक बारी हम पोप को देखें, एक बारी हम वैटिकन सिटी में अपना पांव रखें। तो हमारा ये इतने सालों से बहुत पुरुषार्थ कर रहे थे कि हम पोप से मिले, और फिर शायद 1.5 साल है 2016 का नवंबर में ये एक मौका मिला था, कुछ इंटरफेथ ग्रुप से मौका मिला था, जो वेंडी बहन है और हम मिले थे जो अभी का पोप है। तो जो वेंडी बहन ने उनको जो दादी जानकी का किताब है कंपेनियन ऑफ गॉड, नहीं भगवान का साथी, वो स्पेनिश लैंग्वेज में उनको दिया था, क्योंकि उनकी भाषा स्पेनिश है, क्योंकि वो है अर्जेंटीना से। तो ये किताब दिया और उनको ये बोला कि जब सभी धर्मों में गुणों के ऊपर अटेंशन होगा तो सभी धर्म आपस में मिल सकते हैं, और जो ब्रह्मा कुमारीज हैं ये इस बात के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, सभी के अंदर जो गुण है, जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, उनको फिर से उत्पन्न करने के लिए। तो ये जैसे मैसेज दिया, और हर एक को जो भी उस छोटे से मीटिंग, छोटा सा मीटिंग था, तो हर एक को एक जैसे चांस था कुछ बोलने के लिए पोप को। तो जब मैं जा रही थी तो मेरे अंदर ये था कि जैसे मेरे साथ जैसे बिल्कुल दादी जानकी बिल्कुल साक्षात रूप में मेरे साथ है, नहीं क्योंकि नहीं तो ऐसे सोचते कि दादी को मिलाना चाहिए पोप से, लेकिन उसमें वो कुछ खास ऐसा था जो सडनली बना था और बिल्कुल उधर के लोगों से मिलवा रहे थे, कोई बाहर से आने का नहीं था। तो मेरे अंदर ये था कि मैं दादी साकार रूप में नहीं आ सकती, लेकिन जैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि दादी ही उनको दृष्टि दे रही है, बाबा दादी के द्वारा, दादी मेरे द्वारा। और रियली ऐसा अनुभव था कि वो बाबा से दृश्य से दृष्टि ले रहा था। और ये जो अभी का पोप है वो बहुत ही बहुत निर्माण वृत्ति का है, जो जैसे और आगे वाले पोप होते हैं वो बहुत समझते कि हम बहुत ऊंची जैसे स्थान पे रहे, हम जैसे बड़ी गाड़ी में चले। ये पोप कहते हैं नहीं, मुझे पैदल चलना है, मैं सभी के साथ रहूंगा, जो कैंटीन है और जो भी प्रीस्ट है उनके साथ मैं भोजन करूंगा। और वैसे ही करता है बिल्कुल, जो भी सारे चर्च में तो अभी बहुत सारा करप्शन है, तो वो सारा निकालने का वही पुरुषार्थ कर रहा है। तो जैसे एक खास आत्मा है, और ये सरप्राइज नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रामा अनुसार इसी पोप से बाबा के बच्चे मिले हैं, नहीं तो पहले वाले पोप से थोड़ा दूरी से मिले, ऐसे जैसे दादी और जयंती बहन भी थोड़ा जैसे कुछ बैरियर है और ऐसे मतलब छोटे रूप से मिले हैं, लेकिन ये पहली बारी है जब कुछ बोलने का भी मौका मिला है। तो इसीलिए फिर जो भी बाबा के घर में आते हैं, सेंटर पे आते हैं, चाहे प्रोग्राम्स के लिए, चाहे कोर्स के लिए, चाहे मुरली के लिए, सभी जो हैं थोड़ा चर्च से थोड़ा दूर होकर के आए हैं, क्योंकि वहां पे वो कहते हैं कि अगर तुम चर्च के अलावा कहीं जाओ तो जैसे कि डेविल के पास जा रहे हो। नहीं, डेविल क्या कहते हैं, राक्षस, नहीं मतलब जो मतलब ईवल है उसके पास जा रहे हो, तो बहुत उसके अंदर ये जैसे भय भर करके रखते हैं। तो इसलिए जो भी आते हैं वो ऑलरेडी उस मतलब चर्च के जो उसमें जो थोड़ा पंजा समझो उससे निकल करके अपने खुद का इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में। और वहां पे बहुत ही भावना वाले लोग हैं, नहीं क्योंकि भक्ति बहुत है, तो वो कहते हैं कि हमें क्राइस्ट से बहुत प्यार है, बाकी जो कैथोलिक धर्म है उसका हमें चर्च है उससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हमें क्राइस्ट से बहुत प्यार है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम आपको क्राइस्ट के भी पिताजी से, नहीं क्राइस्ट के बाप से मिलाएंगे, नहीं तो बहुत खुश हो जाते। तो इसलिए वहां पे भी जैसे अभी हम वहां पे भी दादी तो सभी को, सभी सेंटर की बहनों को, भाइयों को जॉब पे भेजती है, नहीं ना चाहते हुए भी। और फिर अभी हम समझते हैं कि चाहे जो लौकिक में जॉब है उसमें भी बाबा की सेवा ही समाई हुई है। तो वहां पे एक यूएन का एक हेडक्वार्टर्स है, तो ड्रामा अनुसार 6 महीने के, जब मैं रोम में पहुंची 6 महीने के बाद ही वहां पे एक जैसे जॉब मिला था। और वहां पे करीब 3000 लोग सारे विश्व से, वहां पे उनका जॉब है। तो इसलिए रोज किसी न किसी से मिलना होता है कि जो मेडिटेशन के में इंटरेस्ट है। और वहां पे दो हफ्ते में 2 बारी लंच टाइम में जैसे सभी के लिए क्लास होता है मेडिटेशन के ऊपर। तो इसीलिए बाबा की सेवा चलती रहती है, वहां पे भी चलती है, सेंटर पे तो चलती है, और फिर वहां पे इटली में तो 3-4 सेंटर है और एक छोटा सा स्थान है जहां पे रिट्रीट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब सभी आते हैं, मधुबन में आते हैं, बहुत आजकल तो वहां की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है, तो कई जो बाबा के बच्चे नहीं आ पाए, लेकिन उनका इतना प्यार है मधुबन में, मधुबन निवासियों का बहुत 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 प्यार है। तो इसलिए रियली उनकी भी त्याग और तपस्या देख करके ऐसे होता है कि चाहे मतलब भारत का, हम ऐसे भी नहीं कहते ये भारत का ज्ञान है, नहीं ये तो भारत से भी बियॉन्ड का ज्ञान है, नहीं विश्व का, बाबा के जो यूनिवर्सल ज्ञान है, लेकिन उसको भी समझ करके अपने जीवन में धारण करके कितना वो, जैसे चाहे कई हैं जो सेंटर से दूर दूर रहते, कोई भी सेंटर नहीं है उनके शहर में, क्योंकि इटली काफी बड़ा है रिलेटिवली, तो लेकिन अंदर में इतना पक्की धारणा है, चाहे अमृत वेला है, चाहे मुरली है, चाहे सेवा करने की उमंग है, तो इसलिए बाबा ये सेवा देने करने का चांस देते हैं, चाहे सेंटर में, चाहे जॉब में। और फिर मधुबन में तो हम आते ही हैं, नहीं हर साल तो आते हैं, और वैसे तो बचपन से आते हैं, तो इसलिए सभी मधुबन निवासियों से के साथ बहुत हमारा बहुत बहुत प्यार है, उनका भी हमारे साथ बहुत प्यार है। और यही एक्चुअली इसी बात को याद करते, जब हम वहाँ होते हैं तो इसी परिवार के प्यार को याद करते ही जैसे उमंग आ जाता है, जैसे बाबा दूर से पालना देते हैं, नहीं मधुबन के हिस्ट्री हॉल में चाहे बाबा की शांति स्तंभ है। तो मालूम नहीं आपको कुछ प्रश्न पूछना हो, 5 मिनट है, नहीं तो हम योग में बैठेंगे। हमारा परिचय तो, नाम तो है राधा, तो और हम वैसे हमारे पिताजी दिल्ली के हैं और हम बड़े भी दिल्ली में ही हुए, और हमारी माताजी यूके की हैं, स्कॉटलैंड की, और उन्होंने 1977 में ज्ञान लिया था पांडव भवन, दिल्ली पांडव भवन से, तो हम तो छोटे से थे उस टाइम। और ऐसे भी था कि वो तो फॉरेनर थी, हैं फॉरेनर है, और दिल्ली में जॉइंट फैमिली में रहती थी, और ज्ञान उन्हों को ही अच्छा लगता था, और सभी बहुत बहुत अगेंस्ट थे, नहीं उनको नहीं अच्छा लगता था। और लेकिन उनके अंदर ऐसी बाबा के अंदर प्यार, जैसे का जन्म हुआ, नहीं बाबा के प्रति इतनी पहचान आई कि बहुत मुश्किलों को पार करके, जैसे वो क्लास में भी जाती थी, सब कुछ सभी धारणाएं तुरंत ही पालन करने लगी, और बिल्कुल जैसे सेवा में भी लग गई, हिंदी भी सीख रही थी, और जो वहाँ पे सेंटर में इतना इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन किसी ना किसी रूप से उनको ये पहचान हुई कि इनकी दृष्टि जो भी थे वहाँ पे, ऑलराउंडर दादी थी, शारदा बहन जी थी, तो सभी इनकी दृष्टि से उनको ये पता लगा कि जो मैं जानना चाहती हूँ ये लोग जानते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके फिर हम भी जैसे बड़े होते गए, सभी के प्यार से बड़े होकर के, फिर जब स्कूल पूरा हुआ तो फिर यूके में गए, और फिर एक साल के बाद वहाँ पे सेंटर पे रहने लगे, तो वहाँ पे भी थोड़ी पढ़ाई भी की, और फिर मतलब वहाँ पे जॉब तो करना होता है, तो इसीलिए वो भी करते थे शुरू से ही, और सेंटर पे भी रहते थे, पढ़ाई भी करते थे, और फिर बाबा ने इटली में भेजा, तो ये सभी बहुत बहुत सीखने का चांस मिला है, और अभी और भी बहुत सीख रहे हैं, परीक्षाएं भी आती है, लेकिन वो भी तूफान जैसे तोहफा बन जाता है। अभी भी जॉब करते हैं जी, हाँ जी। एक्चुअली ये है कि वहाँ पे क्योंकि ऐसा स्थान है जहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं, और कुछ ना कुछ बाबा के भंडारी के लिए भी हो जाता है, क्योंकि इतने नहीं है जो आते हैं, जो चलता सभी स्टूडेंट्स के द्वारा चले, कुछ ना कुछ होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है, तो इसीलिए दादी भी कहती कि सभी इंडिपेंडेंट रहो, समर्पण होकर रहो, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि यज्ञ के ऊपर कुछ बोझा हो, तो इसलिए वहाँ पे भी बाबा ऑलराउंड सेवा सिखाते, चाहे बाथरूम की सफाई हो, चाहे क्लास कराना हो, सब कुछ सभी करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी कुछ नहीं, बाबा सभी प्रकार की सेवा की रिस्पेक्ट सिखाते हैं।